মনহ মন অচিরাত অবিলম্বে শীঘ্র স্যাত হো জাতা হ্যায় বিরজং রজোগুণ শূন্য জুত শ্বাসস্য জিসনে শ্বাস পর বিজয় পা লিয়া হ্যায় যোগিনঃ যোগ মে লগা হুয়া বায়ু অগ্নিভ্যাম বায়ু আর অগ্নি সে যথা জয়সে লোহম লোহা ধ্মাতাম দগ্ধ কিয়ে যানে পর তেজতি ছোড় দেতা হ্যায় পূর্ণতা মলান অসিদ্ধি অনুবাদ জো যোগী এসে প্রাণায়াম কাজ অভ্যাস করতে হ্যাঁ বে তুরন্ত সমস্ত মানসিক উপদ্রব সে উসি তরহ মুক্ত হয়ে যাতে হ্যাঁ জিস প্রকার পঙ্খা ঝলনে সে অগ্নি মে রক্ষা সোনা সারী অশুদ্ধিও সে রহিত হয়ে যেত তৎপর্য মন শুদ্ধ করনে কি বিধি কী সংস্কৃতি ভগবান চৈতন্য কি হ্যাঁ কহনা হয় মনুষ্য কো হরে কৃষ্ণ কীর্তন করতে চাই আগে কহতে হ্যাঁ পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কী জয় হো কৃষ্ণ কে পবিত্র নামোকে কীর্তন কী জয় বোলি যাতে কিন্তু যেই কই কীর্তন করতে চালু করতে হয় कि मन शुद्ध हो जाता है चेतो दर्पण मार्जनम भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य के मन में एकत्र होने वाला मल साफ हो जाता है मनुष्य अपने मन को या तो प्राणायाम के द्वारा या कीर्तन विधि से शुद्ध कर सकता है जिस प्रकार अग्नि में रख कर धौंकनी से धौंकने पर सोना शुद्ध हो जाता है भगवान कपिल देव अपनी मां देवहूति से अष्टांग योग का वर्णन कर रहे हैं जिस योग में आठ अंग हो उसको अष्टांग योग कहते अष्टांग अष्टांग तो योग का पहला अंग है यम दूसरा है नियम यम का अर्थ होता है नहीं करने लायक कार्य को नहीं करना भगवान को समझने में आध्यात्मिक उन्नति में जो भी कार्य बाधक है उसको छोड़ देना इसको यम कहते हैं जैसे मांस नहीं खाना मदिरा नहीं पीना जुआ नहीं खेलना इत्यादि तो जो नहीं करने लायक कार्य है उसको यम कहते हैं और करने लायक जो कार्य है जैसे जप करना भगवान को प्रणाम करना कथा सुनना दान देना स्नान करना ये सब नियम कहे जाते हैं तो योग का पहला अंग है यम दूसरा है नियम और तीसरा है आसन योग करने के लिए भगवान की भक्ति में बढ़ने के लिए कुछ निश्चित आसन होते हैं अब देखे हैं इस संसार में भी एक विशेष कार्य करने के लिए एक विशेष आसन होता है जैसे बच्चों को पढ़ना होता है तो बैठते हैं अब बच्चे स्कूल में जाएं और शीर्षासन लगाया करें पढ़ते समय जब ही शिक्षक आवे तभी सब सिर के बल खड़े हो जाएं तो वो आसन उनको सहायता नहीं करेगा रेल चलाने के लिए आसन होता है वायुयान चलाने के लिए अपना एक निश्चित ढंग से खड़ा होना होता है या बैठना होता है कोई कोई ऐसी सवारियां हैं जैसे रेल आदि जिन पर खड़ा रहकर कहीं चलाना है बैठे हुए पकड़े जाएं यदि ड्राइवर तो उन फाइन हो जाता है सस्पेंड कर दिए जाते हैं वहां खड़ा रह करके चलाना है तो जो व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है तो उसके लिए कुछ शास्त्र में आसन बताए गए। जैसे हम कथा सुन रहे हैं तो एक आसन से बैठे, एक निश्चित है आसन बैठ। इसमें भी जो लोग जितासन होते हैं सुखपूर्वक 3 घंटा एक आसन से बैठ सकते हैं तो वह बहुत अच्छा माना जाता है। 3 घंटा बैठे तो रीढ़ को सीधा करके बैठे हैं, और कोई व्यक्ति यदि 3 घंटा बैठा रह जाए, पैर को इधर उधर न करे, तो माना जाएगा कि उसका आसन सिद्ध हो गया। भगवान की भक्ति में यद्यपि इस प्रकार के आसन बहुत आवश्यक नहीं है, फिर भी कुछ सीमा तक आवश्यक है। बैठ करके जप करना चाहिए, यदि बैठ करके जप करने पर नींद आती है तो खड़ा हो जाना चाहिए, खड़ा होने पर भी नींद आवे तो टहलना चाहिए, टहल टहल कर जप करना चाहिए, वो तो अल्टरनेटिव है। लेकिन फिर भी आसन है अपने अपने ढंग का। तो तीसरा है आसन, योगी लोग अपने मस्तक को, छाती को, रीढ़ को सीधा करके बैठते हैं, और इसके बाद है प्राणायाम, ये चौथा अंग है। प्राण पर आयाम, आयाम का अर्थ होता है कंट्रोल, नियमन, अपनी इच्छा के अनुसार सांस लेना। एक एक सांस को हजारों वर्ष के बाद एक एक योगी छोड़ते थे, ऐसे प्राण पर कंट्रोल कर लेते थे। हम लोगों को भगवान ने गिन करके सांस दिया है स्टॉक, तो हम कुत्ता जैसा जल्दी जल्दी हाँफ करके बिता दें चाहे कम स्पीड से लें। तो सांसों को रोकने के कारण कितने योगी लोग लाखों बरस जीवित रह जाते थे। ऐसा नहीं कि आसन पर ही वे सांस को रोके थे, कहीं चल भी रहे, कहीं भी सिद्ध था कि बहुत देर से सांस को छोड़ेंगे या ग्रहण करेंगे। रेचक, कुंभक, पूरक, 3 प्रकार से सांस लिया जाता है। पूरक का अर्थ है सांस लेना, पूरक करना, और कुंभक का अर्थ है यहीं पर रखे रहना देर तक, कुंभ माने घड़ा, घड़ा जैसा, और रेचक का अर्थ है खाली करना। तो बहुत परंपराएं ऐसा करने से मनोमल दूर हो जाते। तो भगवान यहां पर चौथे अंग का वर्णन कर रहे हैं। 5वां अंग है प्रत्याहार, इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेना और भगवान के रूप में लगाना, तो हटा लेना इसको प्रत्याहार कहते हैं। इसके बाद है धारणा, हमें भगवान के जिस रूप में मन को लगाना है उसकी बारंबार धारणा करनी चाहिए, ध्यान में देख। 7वां अंग है ध्यान, और 8वां है समाधि। समाधि का अर्थ होता है यदि 3 मिनट किसी व्यक्ति का मन किसी एक विषय में रह गया तो उसको समाधि कहते हैं। मन बहुत चंचल है, 3 मिनट तक भगवान में रह जाए, कहीं इधर उधर ना जाए, तो इसको समाधि कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अष्टांग योग का वर्णन कर रहे हैं, उसमें यहां पर प्राणायाम का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक। जो योगी प्राणायाम करते हैं, और केवल प्राणायाम नहीं, इसके पहले और जम नियम और भक्ति जो करना है, जप करना है, वो सब करते हैं, तो उनका मन है अचिरात विरजम स्यात, अचिरात ही विरज हो जाता है। रज का अर्थ होता है वासनाएं, हृदय में भोगों की जो लालसा है संसार में, बहुत बहुत मैं ये बनू वो बनू ये करूं, मन इधर जाता है उधर जाता है, तो इसको रज कहा गया है संस्कृत। वीरज मतलब विगत रज। जब भगवान की भक्ति करते हैं, प्राणायाम करते हैं या कीर्तन में नाचते हैं, तो मन वीरज हो जाता है, कामनाएं हृदय से तिरोहित होती हैं, वासनाएं चली जाती हैं। शर्त है कि उस व्यक्ति को योग में लगे रहना चाहिए। जैसे जब करना है तो कर रहे हैं हमेशा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी चीज में समय लगता है। प्रायः लोग पूछा करते हैं कि हम इतने दिन से जप करते हैं, हम हमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, लेकिन समझ में आवे और न आवे, लेकिन फल बनता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं फोन कर रहे हैं, बहुत बहुत दूर दूर फोन कर रहे हैं, और आप कहें कि हमको कहीं बिल सिल दिखाई नहीं दे रहा है, हम कैसे माने कि इसका बिल बन रहा है? आपको दिखाई दे या न दे वो तो बन रहा है, जिस दिन वो बिल का कागज आएगा तब पता चलेगा। कई ऐसी बातें हैं जो हमारे सामने नहीं घटती है, हम उसे नहीं समझ पाते, पर नहीं समझ पाने का अर्थ यह नहीं है कि वो घटना नहीं हो रही है। भगवान का नाम हम एक बार भी बोलते हैं तब भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, बहुत हमारी शुद्धि होती है। हमें अनुभव नहीं होता है, लेकिन वो सब रिकॉर्ड बनता जाता है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं कि अचिरात तत्काल ही मन शुद्ध हो जाता है, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं। प्राणायाम में सिद्ध योगी लोगों का मन मनोमल को खो देता है, तो वहां मल का अर्थ है चंचलता, वहां केवल इतना ही अर्थ है चंचलता, उनका मन चंचल नहीं रह जाता है। जिस विषय में लगाना चाहते हैं अर्थात भगवान के रूप में लगाना चाहते हैं तो वो समर्थ हो जाता है मन। यानी हम लोगों के लिए इसकी शुद्धि का अर्थ है कि मन में जो बहुत बहुत संसार की वासनाएं हैं वे निकल जाए, इसको शुद्धि कहते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने को शुद्ध करे, यह जिम्मेवारी भगवान ने सबको दी है। जैसे हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, यह जिम्मेवारी हमारी अपने पर है, उत्तरदायित्व स्वयं है। छोटा छोटा बच्चा रहते हैं तब माँ साफ करती है, नहलाती है, धुलाती है, कपड़ा साफ करती है, लेकिन जब ही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह स्वयं ही अपनी सफाई करने लगता है, अपने से दत्वन करता है। इधर तो दत्वन चलता भी नहीं, अब ब्रश करता है, स्वयं ही मुंह धोता है, आंख धोता है, व्यक्ति सजाता है शरीर को। तो जिस प्रकार हम अपना उत्तरदायित्व तो समझते हैं कि हम अपने शरीर को स्वच्छ रखें, वस्त्र को स्वच्छ रखें, घर को स्वच्छ रखें, तो इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आत्मा। और आत्मा मन के कैद में है, इसलिए मन को स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक। जैसे कोई व्यक्ति बाहर साफ रखे घर, मान लीजिए रोड भी बहुत साफ है, पार्क भी बहुत साफ है और सब, और सारा कूड़ा करकट घर में गांज दिया जाए, तो उस तरह से लोगों की आज की दशा है। बाहर सफाई है लेकिन भीतर मन में बहुत वासनाएं भरी हुई है, मन में बहुत प्रकार की कामना है, मान की कामना है, धन की कामना है, और भी विषय भोगों की बहुत बहुत कामना है। सबसे महत्वपूर्ण है कि मन की सफाई की जाए, और शरीर तो साफ रखना ही चाहिए, घर द्वार ठीक है, लेकिन मन की सफाई करनी चाहिए। तो मन की सफाई होती है, जैसा शास्त्र कहता है, सबसे अधिक मन की सफाई होती है भगवान के नाम के उच्चारण से। इसके समान वास्तव में समस्त शास्त्रों में और कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा है नारद जी से कि नातः पर तरोपायम सर्व वेदेषु विद्यते, भगवान के नाम के उच्चारण के समान बलशाली साधन समस्त शास्त्रों में नहीं देखा गया कुछ भी। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी चाहे और भी आचार्य गण सबसे पहले यही कहते हैं भगवान का नाम जपो, नाम जप, जैसे तैसे भी, पहले मन नहीं लगता हो फिर भी जपते रहें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो शास्त्र जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य कहते हैं। तो इस तरह से सिद्ध हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति का यह अपना उत्तरदायित्व है कि वह जप करे अपने को शुद्ध करने के लिए। अच्छा, यह ऐसा साधन है भगवान नाम का उच्चारण एक ऐसा साधन है कि यह केवल उस उच्चारक को ही नहीं शुद्ध करता है, सुनने वाले को भी शुद्ध कर देता है। और जो साधन है, जैसे आप प्राणायाम करें, ध्यान करें, तो निश्चित है आपकी शुद्धि होगी। व्यक्तिगत रूप से जो ध्यान कर रहा है उसकी शुद्धि होगी, संदेह नहीं है। प्राणायाम से भी शुद्धि होगी, जम नियम आदि के पालन से शुद्धि होगी। लेकिन भक्ति ही और खास करके कीर्तन ही एक ऐसा उपाय है, भगवान नाम उच्चारण, जिसके द्वारा हम दूसरों को भी शुद्ध कर सकते। और दूसरे में केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग आदि भी शुद्ध होते, ये शास्त्र कहता है। तो हम प्रतिदिन सफाई करते हैं, कपड़ा धोते हैं, शरीर साफ करते हैं, उसी तरह से हम लोगों को अपने को, मतलब आत्मा को, मन को शुद्ध करते रहना चाहिए। मन शुद्ध हो जाता है तो आत्मा अपने स्वरूप में हो जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक के प्रारंभ में ही कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। यह चित्त एक दर्पण की तरह है। दर्पण का अर्थ है मिरर, ऐनक। यदि मान लीजिए आपके पास बहुत सुंदर दर्पण है और आपको दिया जाए कि आप अपनी प्रतिच्छवि देखिए, लेकिन दर्पण पर यदि मैल जमी हुई है बहुत वर्षों से, तो हम उसमें अपना स्वरूप नहीं देख पाएंगे, नहीं दिखाई देगा। भले वो दर्पण कितना भी महंगा हो, कुछ भी हो, सोना से मढ़ा गया हो, कितना भी महंगा, उस दर्पण में हम अपना मुख नहीं देख पाएंगे। उसी तरह से चित्त वास्तव में इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि हमारे हृदय में भगवान का रूप या अपना स्वरूप भी दिखाई नहीं दे रहा। भगवान वास्तव में हैं और उनके साथ हम लोगों का नित्य अविच्छेद्य संबंध है। हम भगवान के नित्य परिकर हैं, जड़ देह नहीं है, भौतिक स्थितियों से परे हैं, परंतु अपना स्वरूप दिखाई नहीं पड़ रहा। और इसका कारण है कि भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं हृदय में, इसीलिए कामनाएं हो रही हैं। हम लोगों के मन में जितना अपने परिवार के लिए और भी बातों के लिए जितनी चिंता हो रही है, उतना अपने लिए कभी चिंता नहीं होती है कि मैं भगवान से प्रेम करूं, हमारे स्वरूप है, हम क्षण भंगुर संसार में डाल दिए गए। अब देख रहे हैं सारे संसार में लोग कितना व्यग्र हैं, काम धंधा में, इसमें उसमें, और मनुष्य समाज ड्यूटी बांधा है कि भाई किसी को कितना काम करना चाहिए, तो 8 घंटा। उधर विदेश में भी यही स्टैंडर्ड है, 8 घंटा कम से कम काम करना है। यह किस लिए? जीविका के लिए। और उसके अलावा सोना है, तो सोना को तो इसमें जोड़ा नहीं जाएगा, स्लीपिंग वो अलग है, आप चाहे जितना मन करे सोइए चाहे जगिए, पर 8 घंटा काम करना है। तो कुछ सोने में समय चला जाता है, सोने में कम से कम समय विषयी आदमी का 6 घंटा चला जाता है, और ज्यादा तो कुछ लोग तो कुंभकर्ण जैसे और भी बढ़ा लेते हैं, जब देखिए तब उनको टाइम मिला कि बस सोना चालू, उनको भगवान से कोई मतलब ही नहीं। तो अधिक सोने में, कुछ लोग सोने में समय बिताए, तो 8 घंटा वैसे काम करने में गया, सोने में 6 घंटा गया, या कुछ लोगों का 8 घंटा भी चला जाता है, तो 16 घंटा तो ऐसे गया। और जगे तो फिर उसी में शरीर धोना है, दत्वन करना है, फिर पकाना खाना, ट्रेन में इधर जाना आना, इस तरह से सारा घंटा ही चला जाता। ये तो सरकार की भी एक कृपा है कि रविवार को काम नहीं कराते। तो कम से कम यह 8 घंटा बचता है। लेकिन लोग समाज में ये समझते हैं कि ये जो समय बचा है संडे का, वो अपने मन से घूमने के लिए बनाया है, ऐसा वो समझते हैं, फ्री रखा गया है। चाहे हम टीवी देखें कई घंटा, चाहे कुछ करें। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये सब कपड़ा साफ करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए रिलैक्स टाइम दिया गया, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि स्पेशल भगवान के भजन के लिए टाइम मिला। टाइम देने वाले भी ये सोच करके टाइम नहीं दिए हैं। लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए कि भगवान ने कम से कम सप्ताह में ये जो समय दे रहे हैं, तो उस दिन तो जप करें, भजन करें, भगवान के मंदिर में आवें, भक्तों का संग करें, भगवान को समझें। आखिर ये शरीर नहीं रहेगा, परिवार भी नहीं रहेगा, चले जाएंगे। प्रतिदिन का कार्य है भगवान को समझना, जप करना, भागवत पढ़ना और सब। लेकिन यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम रविवार को भगवान को समझना चाहिए। यह परंपरा केवल हम ही लोगों में नहीं है, हमने देखा है सब जगह, आप सुनते भी होंगे कि संडे को लोग चर्च में जाते हैं। कुछ भी हो, 6 दिन जो भी पाप किए होते हैं तो क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं। खैर वहां तो हमारे समझ से कोई भजन पूजन है नहीं, लेकिन वो जो भी गलती 6 दिन किए रहते हैं, पाप सब इकट्ठा करके ले जाकर के वहां डाल देते हैं कि हमको माफ कीजिए, इतना पाप किए हम आपको अर्पण करते हैं, और फ्री कीजिए कि 6 दिन और करें आगे। ये तमाशा कहते हैं कि हमारे लिए क्राइस्ट सफर कर रहे हैं। हम लोगों का तो ये विचार नहीं है। हम लोग मंदिरों में आते हैं तो भगवान को पत्र, पुष्प, फल या अपने मन के शुद्ध भावों को अर्पित करते हैं। ऐसा नहीं करते कि हम पाप अर्पण करें भगवान, पाप हम अपना भोग लेंगे, प्रभु आप हमें अपनी भक्ति दीजिए, कृपा कीजिए। यही विचारधारा है भारतीय संस्कृति। तो ये बहुत अच्छा नियम है कम से कम संडे को आना, और भी अच्छा है कि प्रतिदिन कुछ न कुछ किया जाए। यहाँ अधिकांश भक्त अपने घरों पर करते हैं, कृष्ण को रखे हैं, चाहे फोटो रखें, चाहे विग्रह रखें, जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, जितना भी समय मिले। सबसे बड़ी बात है कि अपनी जिम्मेवारी हमें समझना है, हमें अपने को शुद्ध करना है। भगवान मदद कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि इस तरह से मनोमल दूर होगा, अवतार लेकर, प्रवचन करके और स्वयं ऐसा आचरण करके भगवान हम लोगों को सिखा रहे हैं। और बहुत प्रेम से भगवान अपनी माँ को बता रहे हैं। कई बार दोहती के लिए वे जननी शब्द कहते हैं, मातः अम्ब ऐसा बोलते हैं। भगवान गुरु हैं माँ के, लेकिन संबोधन में कहते हैं माँ मेरी जननी अम्बा, ऐसा बोलते हैं। ऐसा वो नहीं बोले कि मेरा शिष्य माँ, ऐसा नहीं बोले। संबंध जो है वो है। समय पर बच्चा भी माँ को उपदेश कर सकता है, लेकिन माँ कह करके ही, प्रणाम करके ही करना चाहिए। माँ तुम्हारे चरणों में मेरी प्रार्थना है कि तुम भी जप किया करो। एक बच्चा कह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकता तुम माया में हो और तुम ऐसे कुछ नहीं करती हो, तुम भी जप करो नहीं तो नरक में जाओगी। ऐसा बोलने का ढंग नहीं है, शास्त्र बताता है। तो इस तरह ये तो उपलक्षण है, पिताजी को कहना हो तो उन्हें प्रणाम करके कहना चाहिए, भाई को कहना हो उनको प्रणाम करके कहना चाहिए, अपने संबंधी को कहना हो तो उस संबंध जो है उस संबंध को कायम रखते हुए ही कुछ कहना चाहिए, उसने ऐसे आदर से बोलना चाहिए, तो उसका प्रभाव होता है। भगवान इस तरह पुत्र हैं परंतु अपने माँ का हित कर रहे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य है अपने को शुद्ध करना, यह कोई ऐसा उपदेश नहीं है कि आपसे दूसरे का कार्य करने के लिए बताया जा रहा हो। भजन व्यक्ति अपने लिए करता है। तो कोई भक्त कह रहा है कि आप भजन कीजिए, जप कीजिए, तो वह इस वो भजन जो है वह जो कार्य हो आपके हित के लिए बताया जा रहा है। जैसे किसी रोगी को कोई वैद्य उपदेश दे कि तुम ये दवा खा लो, ये दवा खा लो, तो रोगी को ये नहीं समझना चाहिए कि डॉक्टर अपने स्वास्थ्य के लिए हमको कह रहा है मैं खाऊंगा तो इसका हेल्थ सुधरेगा, नहीं, वो उसके हित के लिए डॉक्टर कह रहा है। पिता अपने पुत्र के हित के लिए कुछ कहता है। तो इसी तरह शास्त्र और गुरुजन जो कहते हैं वास्तव में उस व्यक्ति के हित के लिए कहते हैं। हम लोगों को इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए कि हमें करना है। और समय बहुत तेजी से बीत रहा है। कोई व्यक्ति शुभ मन में शुभ भावना रखते हैं कि हमें करेंगे, लेकिन थोड़ा काम है, सोचते हैं अभी 6 महीने के बाद करेंगे, एक काम हमारा सलट जाए, मेरा एक काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, अभी बेटी का विवाह करना है उसको कर लेंगे तब इसके बाद चालू करेंगे, या कोई न कोई हम घर बांध रहे हैं वो पूरा कर लेंगे तब करेंगे, चाहे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो समय बीत जाता है, ऐसे कर नहीं पाते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर इस शुद्धि का यह प्रोसेस कठिन होता तो कोई कह सकता था कि तो हम कर नहीं पाएंगे, बहुत कठिन है। तो कठिन नहीं है, जितने कार्य आप दुनिया में कल्पना करेंगे सबसे सरल कार्य यह। विचार कर कोई भी मनीषी व्यक्ति हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो, तो समझ सकता है कि भक्ति सबसे सुगम कार्य है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम्, भगवान गीता में कहते हैं सुसुखम कर्तुम, सुख से किया जा सकता है। अरे सवेरे आदमी उठ जाए, स्नान करे, इसके बाद माला उठावे, जप करे, तो कौन भारी काम है, कौन मेहनत, सुख से किया जा सकता है। और प्रसाद खाने की बात, तो प्रसाद खाने में कौन भारी मेहनत बताइए कोई मेहनत नहीं है। कुछ गलत चीज खा पी रहे हैं जो लोग, उनको छोड़ देना चाहिए और प्रसाद खाना चाहिए। आखिर भोजन हम कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? शरीर चला लेना, यही उद्देश्य है ना। लेकिन हम पाप करके शरीर चलावे, दूसरे जीवों का मांस खा करके या शराब पी करके शरीर को चलाना चाहें, तो एक तो हम ईश्वर का अपराध करते हैं जिसने नियम बनाया, और दूसरी बात हम अपनी बर्बादी कर रहे हैं, और तीसरी बात यह है कि शराब को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, जीव हत्या करने वालों को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो चतुर्दिक पाप होता है। और ऐसा भी नहीं है कि चलो भाई शराब पी लिए, मांस खा लिए तो हम कुछ 10-20 वर्ष ज्यादा जी जाएंगे, यह भी नहीं। बताते हैं लोग कि सिंह है या बाघ है हाथी की तुलना में बहुत कम दिन जीवित रहते हैं। स्वस्थ हाथी हो तो 400 वर्ष तक जी सकता है, लेकिन बाघ सिंह है बहुत जीवित नहीं रहते हैं, जबकि मांस खाते हैं, खून पीते हैं रोज। कुछ लोगों की गलत धारणा है कि मांस खाने से, शराब पीने से आदमी ज्यादा दिन जीवित रहता है, पर आज तक रिकॉर्ड निकाला गया है कि दीर्घजीवियों में शाकाहारी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा रही है, ऐसा रिकॉर्ड छपा हुआ है। आदमी व्यर्थ पाप करता है और फिर बाद में अपनी गति दूषित करता है, नरक में जाता है, तो आसानी से काम चलाया जा सकता है शाकाहारी भोजन करके। तो यहां पर तो आप लोगों के लिए मैं उपदेश नहीं कर रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि आप लोग दूसरों को ये बताइए, इसके लिए बोल रहा तो मुझे विश्वास है कि यहां जो लोग आते हैं वो पहले से ही शुद्ध होंगे, लेकिन इस शुद्ध भावना का प्रचार करना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और भगवान का नाम जप करें। और कोई कार्य भक्ति के नहीं कर पा सकते हैं तो जप एक बहुत ही आसान कार्य है जो करना चाहिए। और बीच बीच में जैसे ट्रेनिंग होती है, कहीं कैंप लगता है तो कुछ लोग या हम लोग उसको क्या कहते हैं सत्र को सेमिनार फेस्टिवल में आते हैं तो 7 दिन जो मन धूमिल हुआ रहता है और आता है फिर नया उत्साह बढ़ता है भक्तों के संग में कि मैं अकेला ही नहीं हूं, इतने लोग हैं और बहुत से लोग हैं, उनको देख करके भी उत्साह बढ़ता है। इसके लिए मंदिर आना जरूरी है कि चलेंगे देखेंगे, देखने के बाद उत्साह बढ़ता है, सुनने को मिलता है, भगवान का दर्शन करें तो अपने को अपने संबंधियों को और जो भी परिचित हों या अपरिचित हों सबको प्रेरित करना चाहिए इस कार्य के लिए और भगवान का वर्णन करना चाहिए, भगवान की कृपा सौंदर्य सब कुछ का। तो इस तरह जोड़ते जोड़ते पूरा संसार वास्तव में कृष्ण कॉन्शियस हो सकता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है या प्रभुपाद ने करके दिखाया है, तो ऐसा हो सकता है। हम लोगों को इसके लिए ये सोच करके निराश नहीं होना चाहिए कि अरे क्या किया जाए, चारों तरफ बहिर्मुखता बढ़ रही है, पाप बढ़ रहा है, आज के युग में हम अपने को संभालने यही काफी है, ऐसे कहते हैं लोग कभी कभी हताश होकर के कि अरे क्या प्रचार करेंगे, हम अपने को ही संभालने हम जब करें यही काफी है। लेकिन इतना हताश नहीं होना चाहिए, भगवान की कृपा से कार्य हो जाता है, उत्साह रखना चाहिए, उत्साह निश्चया धैर्य। भगवान कपिल देव के इस उपदेश से हमें सीखना है कि हमें अपने को शुद्ध रखना है, किसी भी तरह से अशुद्धि न आने पाए। कभी होती है अशुद्धि, मन में कामनाएं होती हैं चूंकि कामनाओं वाले जगत में रह रहे हैं, इसीलिए भक्तों का संग करना चाहिए, साधुओं का संग करना चाहिए। यदि वास्तव में कोई साधु कामनाओं से हीन है, भगवान के भक्त होते हैं तो उनके संग से भगवान में मति लगती है, ये देखा गया है और शास्त्र में तो सब जगह लिखा ही गया है, साधु संग सर्व शास्त्र कर लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, ये उपाय है। तो इस तरह से अपने को शुद्ध करना चाहिए जैसे भी हो, जैसे हम लोग स्नान करते हैं तो कभी कभी तेल भी लगाते हैं, साबुन भी लगाते हैं, कई तरह से साफ करते हैं, तो उसी तरह शुद्धि के अनेक उपाय हैं। ये भगवान की कथा सुननी है, श्रीमद् भागवत पढ़ना है, भगवान का दर्शन करना है, कुछ सुनना है, प्रणाम करना है, प्रसाद खाना है, जितना प्रोसेस हम अपना सके उतना अच्छा है। लेकिन कदाचित यदि नहीं कर सकते सब तो एक दो प्रोसेस ही खूब दृढ़ता से करना चाहिए। तो मान लीजिए हम कल जप कर सकते हैं, ठीक है खूब जप करें या पढ़ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, जो कुछ भी करना है उसको खूब लगन के साथ करना चाहिए तो मन शुद्ध हो जाता है, ये शास्त्र में उपाय बताया गया। लेकिन शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया पर जम करके लग जाना चाहिए दृढ़ निश्चय कर। उपाय उसके लिए बताया जाता है जो उपेय को जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए बताया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जा रहा है रास्ता पकड़ करके और भूल गया बेचारा, तो वो पूछेगा तो रास्ता पूछने वाले को बताया जाता है जो जाना चाहता है। ऐसा नहीं कि जो रास्ता में रुका हुआ है और उससे हम जाकर कहें कि ये रास्ता इधर जाएगा ये रास्ता इधर जाएगा, तो उससे मतलब क्या होगा वो जाना चाहता ही नहीं है कहीं मेला लगा हुआ है और आप बताए कि ये रास्ता इधर जाएगा ये रास्ता इधर जाएगा ये रास्ता इधर जाएगा, उसको जाना है नहीं। तो वास्तव में जाने वाले के लिए जो भगवान का भजन करना चाहते हैं, अपने को शुद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवतम बहुत सहायक, उनके लिए हजारों तरह से सहायता दी गई। ठीक है भगवान को पाना चाहते हो तो ये करो करो, ऐसे चलो ऐसे चलो, तो अपनी जिम्मेवारी है कि हमें इस पथ पर चलने के लिए तैयार होना चाहिए। तैयारी हो जाएगी तो भगवान फिर मदद करते हैं, कई तरह से मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ जीवों के मन में बात हुई कि हम भगवान की भक्ति करें, ये करें, तो भगवान निकट में मंदिर ला दिए, है ना। तो पहले सोचते भी नहीं थे कि यहां मंदिर होगा, ये होगा, वो होगा। इस तरह से होता है, भगवान फिर व्यवस्था करते हैं। पर चलने के लिए तैयार होना चाहिए, भगवान को पाने के लिए इस जीवन में कमर कस करके तैयार होना चाहिए, जैसे अन्य कार्य करने के लिए तैयार रहते। और पुत्र, परिवार, घर द्वार जो कुछ भी है, भगवान गीता में कहते हैं कि जो मेरी भक्ति में लग जाता है तो उसका सारा भरण पोषण मैं करता हूं। भगवान ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहे हैं, जोग क्षेमम बहा में हम, यह देखा गया है कि भगवान वास्तव में करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तम् ये जनः प्रयुपास्ते तेषां नित्याभिजुक्तानां योगक्षेमं वहामि। वो चिंता नहीं करनी चाहिए बच्चों के, स्त्री की, भगवान जन्म दिए हैं वो चलाते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि काम न करे, आदमी लेजी बन जाए, मैं यह नहीं कहता, लेकिन भरोसा भगवान पर रखना चाहिए, काम करे सब तत्परता से, लेकिन कृष्ण पर भरोसा करना चाहिए, प्रभु सब कुछ करेंगे। और संसारिक लोगों जैसे चिंता में नहीं रहना चाहिए, आनंद से जीवन जीना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कोई प्रश्न है? प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ, लेकिन उन लोगों में भी ये देखा गया है कि जो जिज्ञासु होते थे वही लाभ उठाए, और उन्हीं से ज्यादा कहते थे वे वास्तव। मैं कहीं जैसे प्रभुपाद जी सत्संग रखे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो जो लोग आ जाते थे वही बेनिफिटेड होते थे। ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी घर घर में जाकर बुलाएं कि आओ आना ही पड़ेगा, आओ आना ही पड़ेगा। कीर्तन करने चालू किए, वहां कुछ लोग आ गए, फिर कुछ सुनने लगे, तो उनको ये माना जाएगा कि यह व्यक्ति आया, लेकिन उसको जिज्ञासा हो गई, वहां से फिर भगवान में इंटरेस्टेड हो गया। लेकिन मैं यह नहीं कहा कि जो जिज्ञासु नहीं है, नहीं बढ़ना चाहते, उनको नहीं बताना चाहिए, मैं ये नहीं कहा। लेकिन मैं यह कहा कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ यार साधन उसी की सहायता करते हैं जो चलना चाहता है, और यह बिल्कुल सत्य है। जो लोग चलना चाहते हैं उनकी सब तरह से मदद करता है। हम लोगों का कर्तव्य ये है कि जो लोग सोए हैं उनको बता दे कि चलो, जगा दे। वह भी एक प्रोसेस है, लेकिन वह भी राहगीर को ही जगाएंगे ना, रास्ता में सो गया है तो उसी को जगाएंगे, सबको नहीं जगाया जा सकता है। जगाने पर वही उल्टे तमाचा चला देगा। एक बार जुहू मंदिर की घटना सुना रहे हैं आपको। तुलसीदास नाम के भक्त थे, टेम्पल कमांडर थे उस समय, प्रसन्नात्मा दास, इस समय वो हमारे गुरु भाई हैं, इस समय नहीं रहते। गए मंगला आरती में जगाने के लिए तुलसीदास, तो जगाया, चलो मंगला आरती में उठो, नहाओ, स्नान करके जाओ। वो अंग्रेजी में दोनों बोल रहे थे, वो कहा जस्ट गेट आउट ऑफ माई रूम, वो बोला सोया हुआ भक्त बोला जस्ट गेट आउट ऑफ माई रूम, नो यू हैव टू गेट अप, वो कहने लगा तुमको जगना पड़ेगा चलना पड़ेगा। तो वो कहता है यू आर नॉट माई स्पिरिचुअल मास्टर, यू कैन नॉट कमांड मी, लेट मी स्लीप। जल्दी हटो जाओ, लेकिन वो भी जिद में आ गया, वो हाथ खींचने लगा, इसके बाद दोनों लड़ गए। मैं डांटने लगा प्रश्नात्मक दास को कि आप मंगल आरती के लिए जगा रहे हैं और ये अमंगल चालू कर रहे हैं, ऐसा ठीक काम नहीं। दोनों हाथा पाई मारपीट कर लिए और जा करके जब प्रेसिडेंट से वो कहे प्रश्नात्मक दास तो गवाह में मेरा नाम दे। पूछे पूर्ण ब्रह्म थे उस समय प्रेसिडेंट, तो पूछे हमसे कि क्या बात है, तो मैं जैसे जैसे सुना था वैसे ऐसे कह दिया। तब तो वो सुन करके कहता क्यों उसको जगाने गया। मारा तो हम क्या करें। ऐसे और तो बेचारा मंगला आरती में जगाने के लिए गया था और जो जगा रहा था उसी पर कई तमाचा मारा। प्रेसिडेंट कहा कि उसको जगाने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो सोने। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, एक बार जगाए वो नहाए धोए उठ करके चल दिए मंगल आरती में, अच्छा मानते हैं कि हमको जगाया गया, बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू वेरी मच करते हैं, बहुत अच्छा हुआ आपने हमको जगा दिया। लेकिन जगाने के बाद ही लात जूता और थप्पड़ चला रहे उसको क्या जगाया जाए, बोले सोया रहे अच्छा है। करुणा रखनी चाहिए हम लोगों को, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग जिज्ञासु होते हैं वे इस ब्रह्म पथ पर कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलेंगे और उन्हीं की सहायता की जाती है। जैसे कहीं कहीं आपने बांचा होगा, अंग्रेजी में लिखा रहता है चाहे हिंदी में भी, अंग्रेजी में लिखा रहता है मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। तो जाते हैं लोग व्यक्ति वहां पूछते हैं इंक्वायरी में कि मैं यहां जाना चाहता हूं, ये प्राप्त करना चाहता हूं, हमें बताइए रास्ता है, तो हेल्प करते हैं। लेकिन वो आदमी घर घर में घूम घूम करके नहीं कहता रहेगा कि मैं आपकी क्या हेल्प करूं और ये कीजिए वो कीजिए वो कीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आना चाहिए मंदिर में, आना चाहिए। आप आए तो सिद्ध हुआ कि आप कुछ भगवान मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, ये सिद्ध हुआ तब आपको दिया जाएगा। और वह भी प्रोसेस है, नहीं आने वालों के घर घर भी जाते हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु गए, हरिदास ठाकुर गए, चाहे प्रभुपाद जी भी गए, और भक्त लोग जाते हैं, वह भी विधि है, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जिज्ञासा पैदा हो जाएगी तभी वे यथार्थ लाभ ले पाएंगे, मेरे कहने का आशय ये था, जिज्ञासा होनी चाहिए। इनका प्रश्न है कि शास्त्र कहता है कि जप करना चाहिए तो कुछ कपड़ा या कोई आसन होना चाहिए, तो हम लोग तो ऐसे ही जहां तहां बैठ जाते हैं, तो क्या वो नाम जप फल देगा। हाँ वो देगा। बात यह है कि आसन का जहां वर्णन किया जाता है तो सब जगह एक ही आसन नहीं चलता है, भगवान के मंदिर में तो रज में बैठे नीचे बैठे वही ठीक है, वहां आसन लगाने लगे आदमी तो ठीक नहीं है। कोई जाए कोर्ट में और जज के सामने आसन लगाने लगे तो ऐसे ही सजा हो जाएगी। ठीक है, मंदिर में बिना आसन के भी किया जा सकता है, लेकिन और जगह पर आसन डाल लेना चाहिए जप करने के लिए। लेकिन वो आसन जप के लिए ही होना चाहिए। जिस आसन पर भोजन किए हैं चाहे जिस आसन पर सोए हैं उस पर नहीं, नहीं तो उसके परमाणु आते हैं। अब जिस आसन पर सोए हैं और उसी पर बैठकर भजन कीजिए तो नींद आनी ही लगेगी क्योंकि वो सबका प्रभाव अपनी तरफ खींचता है। इसलिए जप करने के लिए एक अलग आसन पतला रखना चाहिए कि उसको बिछाएंगे उस पर जप करेंगे। जैसे पूजा के लिए यहाँ आसन रखा है उस पर खड़े होकर के पुजारी पूजा करते हैं, वो शास्त्र का नियम है इसलिए वो रखा गया था। तो डायरेक्ट पृथ्वी से संपर्क नहीं होना चाहिए, आसन होना चाहिए। तो आसन पर खड़ा होकर के पूजा करते हैं। हठ योग अलग चीज है, लेकिन शरीर को कम से कम भोजन देना और कम से कम इसको सुलाना चाहिए। ऐसे इतना कम न खिलावे, इतना कम न सुलावे कि और बीमार होकर अस्पताल चला जाए। भगवान गीता में कहते हैं कि यह योग अधिक खाने वाले कभी नहीं सिद्ध होता है और बिल्कुल खाने वाले कभी नहीं सिद्ध होता है। वो तो अपनी अपनी बात है कि भाई अब हमको एक दिन उपवास करना है एकादशी को तो हम बढ़ा दिए 10 दिन उपवास कर लिए। तो अगर किसी का शरीर सक्षम है वो सह सकता है और भजन उसका ठीक है तब तो ठीक है। तपस्या की हमेशा प्रशंसा की गई, भोगों की हमेशा निंदा की गई। और हमारे यहां लोग एक कहावत करते हैं कि खाने बिना जितना लोग नहीं मरते हैं उससे ज्यादा खा करके मरते हैं। हाँ। आप संसार में रिकॉर्ड देखिए कि खा करके बीमार पड़ने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन बिना खाए अब कौन मर रहा है? भुखमरी कहाँ है? कहीं न कहीं से अनाज पहुंच जाता है, सरकार व्यवस्था करती है या रिलीफ होता है काल के समय और सब। लेकिन अस्पताल में जाकर देखिए, किसी वैद्य के पास देखिए तो पता लगेगा कि ये आदमी खाकर बीमार हुआ है और उस बीमारी से कितने लोग मर जाते हैं। तो खा करके मरने वाले ज्यादा, बिना खाए मरने वाले अब तो बहुत कम लोग होंगे, है ना? तो तप करना चाहिए, लेकिन उतना ही तप करे जो भजन में सहायक हो, बहुत ज्यादा नहीं। परंतु तपस्या को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, खूब अच्छा से खाओ पियो ये करो वो करो। इंद्रियों की आदत पहले से ही बिगड़ी है, भोगों के तरफ मन है, इंद्रियां हैं। हम इस जीवन में भी अगर भक्ति के नाम पर, प्रसाद के नाम पर अगर इसको पोसेंगे तब तो ये कंट्रोल से बाहर रहेंगी। इसलिए हिसाब बैठाया गया, मध्यम मार्ग, भगवान बुद्ध देव कहते हैं मध्यम मार्ग में चलना चाहिए। जैसे हिंदी में कहते हैं ना अति वक्ता ना अति चुप। बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए और एकदम मौन भी नहीं रहना चाहिए। ना अति वक्ता, जैसे जो व्यक्ति सवेरे शाम तक कुछ न कुछ गप करता ही रहता है, बात करता ही रहता है, वो भी ठीक नहीं है। और सवेरे से शाम तक एक बात भी न बोले वो भी ठीक नहीं है, गुमसुम वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो मध्यम मार्ग है कि भाई समय पर एकादशी को उपवास किया चाहे जन्माष्टमी पर किया, लेकिन उस समय यदि निर्जला किया जाए तो यह बेस्ट विधि है। कई प्रकार के शरीर की अशुद्धियां निकल जाती है। कुछ लोगों के लिए तो यही बहुत भारी पहाड़ हो जाएगा कि इतना कैसे कर सकते। अच्छा वो नहीं कर सकते तो ठीक है जल पीकर कीजिए, निर्जला नहीं कर सकते तो सजला कीजिए। सजला नहीं कर सकते तो सफला कीजिए। आज बात आई थी जुहू में भी, सफला पर तो ठीक है ना कि अब सरसा सदुग्धा सहलवा या सचिप्स आलू का चिप बनाओ, ये पेय बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ और एकादशी को दे दो फीस्ट संज्ञा। फास्ट का ठीक विरोधी फीस्ट हो, तब तो भक्ति को गायब करेगा ही निश्चित हो गया। कोई उपवास के व्रत की मर्यादा नहीं रही, सिद्ध हो गया। भक्ति के नाम पर केवल खाना को पोषण देना है ठीक नहीं है। पहले भी लोगों ने किया है ना भक्ति को, हम ही तो नहीं चालू कर रहे हैं। पहले के आचार्यों ने भक्तों ने जो किया है उसी पथ पर चलना चाहिए। हाँ, अपनी शक्ति के अनुसार चले। इसीलिए कहा जाता है ना कि भाई आप नहीं कर सकते निर्जला तो जल पीकर कीजिए। जल पी करके भी यदि कठिनाई पड़ रही है तो कुछ फल खा लीजिए एक टाइम, बस हो गया। इसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए तपस्या को, तपस्या बहुत जरूरी है। भोगों से बचना चाहिए। अर्जुन ने पूछा है भगवान से गीता में कि यज्ञ दान और तप के विषय में आपका क्या विचार है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे जरूर करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है, जो सिद्ध हो गया उसके लिए जरूरी नहीं है, अर्जुन का प्रश्न है। भगवान उत्तर देते हैं कि यज्ञ दान तपह कर्म अन्न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपह कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप ये कभी नहीं त्यागना चाहिए, चाहे कोई सिद्ध हो जाए चाहे कुछ भी हो, इसको करना ही चाहिए। क्योंकि मनुष्यों को भी ये पावन करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये सोचे कि अब तो मैं बहुत सिद्ध हो गया इसलिए अब मंगला आरती में उठने की हमारे लिए कोई जरूरत नहीं, तो भगवान कहते हैं नहीं, उठना ही चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कुछ भक्ति में अपने को अपनी मान्यता के अनुसार आगे बढ़ जाते हैं तो वे कह देते हैं अब हमारे लिए जप करना जरूरी नहीं है, माला से जप करना जरूरी नहीं है, 24 घंटे हमारा जप होता रहा। ऐसे हैं वृंदावन में और माला नहीं लेते हैं। पहले वो इस्कान में भक्त थे, इस्कान छोड़ दिया, अब ये प्रचार करते हैं कि माला जरूरी नहीं है। माला तो नौ सिखुआ भक्तों के लिए, बिना माला के ही हमारा जप होता रहा, ये तो मनमाना पंथ हुआ ना। तो मंगला आरती में उठना, एकादशी करना, जप करना और दान करना, कुछ न कुछ देते ही रहना चाहिए, देने की आदत होनी चाहिए। कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति हो गया हो आध्यात्मिक तो कहे कि दान का फल है भगवान में मन लगाना, जब भगवान में मन लग गया तो अब क्या साधन करना है, क्या दान देना है। भगवान कहते हैं नहीं, फिर भी देना ही है, देना ही। और यज्ञ, यज्ञ का अर्थ है भजन, यज्ञ दान और तप कभी नहीं त्यागना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, भगवान कहते हैं। जो जो भगवान कहे हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि भगवान की ही बात को अभिकल कहें, चेंज न करें। तपस्या को प्रश्रय देना चाहिए लेकिन भक्ति शून्य तपस्या को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। और कोई प्रश्न है? सबका क्या तात्पर्य? धर्म तो वर्णाश्रम धर्म है। मान लीजिए हम सन्यासी हैं, हम सन्यास धर्म का पालन कर रहे हैं, कोई गृहस्थ है तो हम गृहस्थ के धर्म के पालन करने वाले को ठीक कहे, उसकी आलोचना ना करें। जो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। एक ब्राह्मण अपने धर्म का पालन कर रहा है, क्षत्रिय अपने धर्म का, सारे वेद द्वारा विहित। लेकिन आज के युग में वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त और किसी विचार को और किसी फेथ को यदि धर्म कहा जाता है तो वो धर्म धर्म नहीं है वास्तव में, वो केवल विचार मात्र है। जिन लोगों को इसका ज्ञान नहीं है वही लोग कहते हैं कि धर्म। लेकिन आप विचार कीजिए तो धर्म से बिल्कुल भिन्न सिद्धांत जहाँ होते हैं वो तो अधर्म होता है। जैसे अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन जहाँ हिंसा की ही विधि बताई गई हो बारंबार, तो उसको कैसे आप धर्म कह सकते हैं? तो कहने वालों ने कहना चालू कर दिया, वो बात है, लेकिन हम लोग नहीं कह सकते कि धर्म धर्म वर्णाश्रम धर्म बहुत धर्म है, स्त्री धर्म है, राज धर्म है, राजा का धर्म है, कर्तव्य है, सन्यासी का कर्तव्य, गृहस्थ का, ब्रह्मचारी का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, ये सब धर्म है। तो हम अपने धर्म का पालन करें, गृहस्थ अपने धर्म का करेगा, ब्रह्मचारी अपने धर्म का करेगा। भगवान ने गीता में कहा है, स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भयाव, अपने कर्म में रहना चाहिए, दूसरे के कर्म को नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ अग्रेसिव विचारों को धर्म कह दिया गया और आज इतनी जनता अपढ़ है, अशिक्षित है, कि वह कोई भी विचार अब चला दीजिए उसको एक धर्म मान लेते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग में मार्ग क्या होगा, मार्ग सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। कलयुग में आप जो भी रास्ता अपना लीजिए, लोग उसी को धर्म मान लेंगे। आप विश्वास कीजिए, यदि कोई आदमी को कोई जीविका का साधन न हो और केवल वो नग्न रहना चालू कर दे और एक कटोरी में भभूति ले ले राख और किसी पेड़ के नीचे बैठ जाए, पेड़ में चिथड़ा बांध करके इधर उधर, तो उसके पास हजारों लोग आने लगेंगे। और कुछ न करे, वो मौन रहे, केवल वो राख फेंकना चालू करे, तो लोग समझेंगे कि सिद्ध हो गए। ऐसा बहुत है। और लोग आते हैं और उनके कर्म के अनुसार भगवान की इच्छा से उनको कुछ रोग ठीक हो गया, कुछ लाभ हो गया, तो कहते हैं कि वो राख फेंका था इसीलिए ठीक हो गया। ऐसा चालू हो जाता है। नहीं तो बताइए, जिन लोगों में ये भावना है कि गाय खाना धर्म है, गोमांस खाना धर्म, वो कभी धर्म हो सकता है? क्या लोगों में ये विचार है कि मान लेते हाँ वो भी एक धर्म है? ये शायद हो सकता है आप नहीं पढ़े होंगे, हमने पढ़ा है खूब अच्छी तरह से, एक एक अक्षर जिनको धर्म कहा जाता है। तो केवल अग्रेसिव विचार दिया गया है, स्पष्ट लिखा गया है उसमें कि मूर्ति पूजा करने वालों को कत्ल करो, सीधा उनका धन छीनो, उनकी स्त्रियों को छीनो और गवर्नमेंट का पोस्ट लो और इतना हेवी जजिया टैक्स लगाओ। जजिया टैक्स का मतलब होता है नन, वो लोग जो धर्म मानते हैं उसके अलावा जो मानते हैं उन पर, यदि वो हमारे धर्म को नहीं मान रहा है तो उस पर टैक्स लगाओ। इतना हैवी कि वो कन्वर्शन मान जाए, वो कन्वर्ट हो जाए, इसको धर्म कहेंगे? हमारा धर्म सिखाता है, वैदिक धर्म, की सब में भगवान को देखो, परमात्मा को देखो, सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पर। तो गीता में भगवान कई बार इस बात को कहते, ऐसा संसार में कहीं नहीं पाएंगे जहां ये बात बताई गई कि सभी को, सभी में ईश्वर को देखो, सबका सम्मान करो, ये करो। नहीं, हमारे फेथ को नहीं मानता है तो उसकी सत्ता मिटा दो संसार से, उसके धर्मस्थल को तोड़ दो। ये तो इतिहास गा रहा है ना, धर्मस्थल टूटे हुए, तोड़ने के लिए वही मंदिर थे, बताइए। लेकिन उस अग्रेसिव विचारों को भी आज धर्म का रूप दे दिया, धर्म कहा जाना। और हमारे सनातन धर्म के अवलंबी हिंदू लोग पूछते हैं, कहते हैं वो धर्म है, ये एक अद्भुत बात हो गई। इसलिए एक पुस्तक निकली है, अपील टू हिंदू साधु, हिंदू साधुओं से निवेदन, वास्तव में पढ़ने लायक, तब पता लगेगा कि हम जिनको धर्म कह रहे हैं वो क्या क्या है वास्तव में। एक उक्ति लोग कहते हैं कि कहीं पर एक चोर चोरी करने गया और चोरों का गिरोह था, दो चार चोर थे और चोरी किए किसी घर में, चोरी किए तो हल्ला हुआ कि चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए, तो वे लोग भी रात्रि का समय था, वे लोग भी हल्ला किए, चोर चोर किधर गए किधर गए किधर गए, तो कोई आदमी उनको पहचान नहीं रहा था कि चोर यही है, क्योंकि वे लोग भी चोर को पकड़ो, किधर गया, ये किया वो किया, वो चोर लोग बोल रहे थे। यही हालत हुई है, कुछ लुटेरे आए हमारे देश में, कुछ सौदा बेचने के लिए आए, कुछ लुटेरे आए, तोड़फोड़ करना छीनना, पहले आए, बाद में सौदा बेचने वाले आए, और बेचते बेचते